नंबर वन रबाब। रबाब गुरु नानक देव जी का प्रिय वाद्य था। उनके पश्चात सभी गुरुओं के कुल में यह कीर्तन का प्रधान संगत वाद्य रहा। अतीत के पंजाब का लोकप्रिय वाद्य और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की गुरबानी में अन्य वाद्यों की अपेक्षा रबाब का अधिक उल्लेख है। हरि कीर्तन का संगत वाद्य रबाब का श्रवण भले ही वर्तमान पीढ़ी ने ना किया हो, लेकिन उसके साथ पंजाबी भावनात्मक संबंध है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुरमत संगीत में रबाब का प्रमुख स्थान है। रबाब भारतीय वाद्य नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वाद्य का नाम प्राचीन फारसी के ग्रंथों में आया है और विद्वानों के मतानुसार यह वाद्य मध्य पूर्व ब्रैकेट में मिडल ईस्ट से प्रवेश करने वाले विदेशियों द्वारा भारत में लाया गया। लालमणि मिश्र के अनुसार पंडित अहोबल ने अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में इस रबाब का उल्लेख किया है, लेकिन इससे पूर्व 16वीं शताब्दी में लिखित अबुल फजल की आयने अकबरी में तानसेन को मात्र नायक ही नहीं कहा गया, अपितु रबाब वादन कला में निपुण भी कहा गया है। अस्तु मात्र संगीत ग्रंथ संगीत पारिजात में इसका उल्लेख होना इसे भारतीय वाद्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं। इसके अतिरिक्त संगीत कार्यालय हाथरस से प्रकाशित सन 1956 के द्वितीय संस्करण के अहोबल कृत संगीत पारिजात में यह श्लोक दृष्टिगत नहीं हुआ, किसी अन्य संस्करण में उपलब्ध हो तो हो। पेज नंबर 176। रबाब का वर्णन निम्न पुस्तकों में मिलता है। नंबर वन ए एस गोसल सिख धर्म अते संगीत पृष्ठ 62। नंबर टू श्रीपदा बंधा पोद्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 40 रिपीट पेज 49। नंबर थ्री डॉक्टर लालमणि मिश्र भारतीय संगीत वाद्य पृष्ठ 49। नंबर फोर अबुल फजल आईने अकबरी पृष्ठ 49। लालमणि मिश्र के अनुसार इसमें चार मुख्य रिपीट। लालमणि मिश्र के अनुसार इसमें मुख्य चार तार होते हैं। एक लोहे का तार चिंगारी के रूप में प्रयोग होता है। इसका तुम्बा गोल या चतुर्भुज आकार का होता है। भाई वीर सिंह जी कहते हैं कि रबाब छह तारों वाला वाद्य है। पर्दे ना होने के कारण इसे अनिबद्ध वीणा कहा जाता है। तानसेन की मृत्यु के पश्चात उनके वंशजों में गायक बीनकार और रबाबी तीनों का ही विवरण मिलता है। गुरु नानक देव जी के हरि कीर्तन के साथ रबाब का संबंध जुड़ जाने से रबाब स्वयं और उसके वादक मर्दाना जो गुरु जी के कीर्तन के साथी और अनुचर थे, दोनों ही अमर हो गए। मर्दाना के पश्चात रबाब वादन की परंपरा उसके वंशज मिरासियों में दीर्घ काल तक चलती रही। मर्दाना एक सिद्ध हस्त वादक थे। अस्तु यह कल्पना की जा सकती है कि इस वाद्य के वादन का ज्ञान इन्हें परंपरागत रूप में अपने पूर्वजों से मिला होगा, जिन्होंने उसको विदेशी आगंतुकों से ग्रहण किया होगा। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखने से यह अनुमान किया जा सकता है कि भारत में इस वाद्य का आगमन 12वीं-13वीं शताब्दी के लगभग हुआ होगा। सिख धर्म के अनुयायियों में यह मत प्रचलित है कि रबाब का आविष्कार गुरु नानक देव जी ने किया और उन्होंने ही मर्दाना को उसके वादन की शिक्षा प्रदान की। यह संभव है कि गुरु नानक देव जी ने उस समय के प्रचलित विदेशी रबाब में कुछ परिवर्तन कर उसे भारतीय राग गायन के विशेष अनुकूल बना दिया हो, लेकिन पूर्णतया उसे भारतीय आविष्कार मान लेना न्यायसंगत न होगा, जबकि रबाब नाम के वाद्य का उल्लेख गुरुजी से पूर्व लिखित फारसी ग्रंथों में देखने को मिलता है। गुरु नानक देव जी ने रबाब का आविष्कार किया। इस तथ्य की पुष्टि कानूने मौसिकी इन ब्रैकेट लेखक सादिक अली खां द्वारा संदिग्ध रूप में की गई है। यह पुस्तक अपर्याप्त है और इसका संदर्भ मात्र संगीत संबंधी पुस्तकों में मिलता है। इस पुस्तक से अद्वित कुछ अंश गुरमत संगीत में उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं। बास का कोल है कि यह रबाब इजाद और मुख त्रह किया हुआ गुरु शाह नानक फकीर का है। इस इल्म में उनको निहायत दखल था कि अपनी जिद्दत तबय से ब्रैकेट में यह रबाब इजाद किया था। बास का कोल है शब्दावली से यह संकेत करती है कि इस मत को पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं है। नंबर वन, प्रोफेसर तारा सिंह, वादन कला, पृष्ठ 270। नंबर टू, सादिक अली खां, कानूने मौसिकी, पृष्ठ 309। पेज नंबर 177। कैप्टन डे ने इस वाद्य का संबंध पंजाब से जोड़ते हुए निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हैं, अर्थात भारतीय रबाब मुख्यतः पंजाब और भारत के ऊपरी भाग में प्रयुक्त होता है, अन्य भागों में इसका प्रयोग मुसलमानों में ही सीमित है। द इंडियन रबाब इज प्रिंसिपली यूज्ड इन पंजाब एंड अपर इंडिया। इट्स यूज इन अदर पार्ट्स इज कन्फाइंड टू मोहम्मदियंस। भारतीय रबाब शब्द इस आशय को व्यक्त करते हैं कि यह रबाब विदेशी रबाब से भिन्न है और उस मौलिक विदेशी रबाब का भारतीय संस्करण है। मूल रबाब के विषय में उपयुक्त विद्वानों का निम्नलिखित मत दृष्टव्य है। द रिबेक, वंस पॉपुलर इन यूरोप, वॉज अ फॉर्म ऑफ रबाब, ब्राउट टू स्पेन बाय द मोर्स, हुज टर्न हैड डिराइव्ड इट फ्रॉम पर्शिया एंड अरेबिया। हियर अगेन द आर्यन ऑर्गन इज एविडेंट, द रबाब बींग अकॉर्डिंग टू ओल्ड वर्क्स अ फॉर्म ऑफ वीना एंड इट इज पॉपुलर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान। अर्थात रेबेक यूरोप में किसी समय लोकप्रिय था, जो रबाब ही का एक प्रकार था और मूर जाति द्वारा स्पेन ले जाया गया था। उन्होंने अपने लिए इसे फारस और अरब से प्राप्त किया था। यहाँ पर पुनः इसका मूलतः आर्यवाद्य होना प्रमाणित होता है। रबाब पुराने ग्रंथों के अनुसार वीणा का ही एक प्रकार है। यह आज भी उत्तर भारत और अफगानिस्तान में लोकप्रिय है। उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रबाब मूलतः आर्यों का एक प्राचीन वाद्य है। संभवत गुरु नानक देव जी ने ही इसमें सुधारात्मक परिवर्तन किए। निश्चय ही यह परिवर्तन भारतीय राग गायन के विशेष तत्वों को दृष्टि में रखकर किए गए होंगे, क्योंकि सिख कीर्तन प्रधानतः शास्त्रीय संगीत पर आधारित था। रबाब को धातु या लकड़ी के टुकड़े से बजाया जाता है। स्वरों की उत्पत्ति तारों पर उंगली फेरकर और उंगली को घसीटकर की जाती है। कुछ लोगों के मत अनुसार सरोद रबाब का ही विकसित रूप है। रबाब पर मींड, घसीट, जमजमा आदि क्रियाएं की जा सकती हैं। इस पर विलंबित द्रुतगत झाला दिखाया जाता है। रबाब चाहे विदेशी वाद्य हो, क्योंकि इसका उल्लेख फारसी ग्रंथों में मिलता है और यह विदेशी वाद्यों द्वारा ही भारत में लाया गया, लेकिन गुरु कीर्तन में इसका प्रयोग सिद्ध करता है। ये गुरमत संगीत में संगत का मुख्य तांत्री साज है, अब लुप्त होता जा रहा है। रबाब जो सिख कीर्तन का प्रमुख अंग था, अब गुरुद्वारों में देखने सुनने को नहीं मिलता।